हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। और आज हम आठवें स्कंद के सातवें अध्याय के 40 से 42 श्लोक पर चर्चा करेंगे। इसमें 40 और 41 का कोई तात्पर्य नहीं है, इसलिए उसका केवल अनुवाद पढ़ेंगे और चर्चा हम श्लोक नंबर 42 पे करेंगे। तो आप ये श्लोक मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। ततः कर्तली कृत्या ततः कर्तली कृत्या व्यापी हालाहलं विषम व्यापी हालाहलं विषम अभ्यक्षन् महादेवः अभक्षण महादेवः कृपया भूत भावनः कृपया भूत भावनः। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की पहले हम 40 और 41 का अनुवाद पढ़ेंगे, आप कृपया सुनिएगा। हे मेरी भद्र पत्नी भवानी, जब कोई दूसरों के लिए उपकार के कार्य करता है तो भगवान हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं भी अन्य सारे प्राणियों के साथ अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। अतएव मुझे यह विष पीने दो, क्योंकि मेरे कारण सारे जीव इस प्रकार सुखी हो सकेंगे। 41 श्लोक। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार भवानी को सूचित करके शिवजी वह विष पीने लगे, और भवानी ने उन्हें ऐसे करने की अनुमति दे दी, क्योंकि वे शिवजी की क्षमताओं को भली भांति जानती थी। आज का श्लोक कृपया मेरे पीछे अनुवाद दोहराइएगा। तत्पश्चात मानवता के लिए शुभ तथा उपकारी कार्यों में समर्पित शिवजी ने कृपा करके सारा विष अपनी हथेली में रखा और वे उसे पी गए। तात्पर्य कृपया सुनिएगा। यद्यपि विष की मात्रा इतनी अधिक थी कि वे सारे विश्व में फैला था, किंतु शिवजी में इतनी महान शक्ति थी कि उन्होंने उसे घटाकर थोड़ी मात्रा में करके अपनी हथेली में ले लिया। मनुष्य को चाहिए कि शिवजी का अनुकरण ना करे, वे जो चाहें सो कर सकते हैं, किंतु जो लोग गांजा तथा अन्य नशीली वस्तुओं का धूम्रपान करके शिवजी का अनुकरण करना चाहते हैं, वे ऐसे कार्यों से अवश्य ही मारे जाएंगे। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य।
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे
हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस भौतिक संसार में, इस मटेरियल वर्ल्ड में हर व्यक्ति तीन चीजों के पीछे बहुत भागता है। कौन सी तीन चीजें हैं वो? किन तीन चीजों के पीछे भागता है हर भौतिक संसार का व्यक्ति? धन, आप नहीं भागते, मैं भौतिक संसार के व्यक्ति की बात कर रहा हूं, इसलिए खुल के बताइए। धन और स्त्री, यश ना, धन, बेसिकली धन, जन और सुंदरी है ना। तो भौतिक संसार का व्यक्ति, हर व्यक्ति इन तीन चीजों के पीछे बहुत भागता है, धन, जन, सुंदरी ना। इसलिए चैतन्य शिक्षाशास्त्र में क्या कहा गया, ना धनम ना जनम ना सुंदरी है ना। और इससे भी बढ़कर कुछ लोग भागते हैं पूजा मान प्रतिष्ठा के प्रति, फेम के प्रति, यश के प्रति। हिसुनस भक्ति विद्या पूर्ण स्वामी महाराज बता रहे थे एक बार अपने एक प्रवचन में, एक लेक्चर में बता रहे थे महाराज कि जो व्यक्ति धन के पीछे भागता है कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, जो फॉलोअर्स के पीछे भागता है कोई खास समस्या नहीं है, जो सुंदरी के पीछे भागता है तो भी इतनी दिक्कत नहीं है, पर जो व्यक्ति पूजा मान प्रतिष्ठा के पीछे भागता है, यश के पीछे भागता है, उसको क्या चाहिए? उसको पूजा मान प्रतिष्ठा पाने के लिए धन भी चाहिए, जन भी चाहिए और सुंदरी भी चाहिए। इनमें से कोई भी चीज इनकम्प्लीट रहेगी तो वो अपने जीवन को अधूरा मानता है ना, कुछ मिसिंग है, वो भी कोई छोटी मात्रा में नहीं। जब तक पूर्ण मात्रा में उसे नहीं मिलेगा तब तक वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। अब अगर हम देखें तो ये सारी की सारी चीजें, धन, जन और सुंदरी, ये भरपूर मात्रा में स्वर्ग लोकों में है। स्वर्ग लोक में ये सब चीजें भरपूर मात्रा में पूरी तरीके से है ना, वहां पर कोई गरीबी नहीं होती, रिसेशन नहीं आता ना किसी प्रकार से, कोई नौकरी की कमी नहीं होती, बहुत पढ़ाइयां नहीं करनी पड़ती पोस्ट पाने के लिए है ना, बहुत कंफर्टेबल लिविंग है, सब कुछ आरामदायक मिलता है वहां पर है ना। और हर व्यक्ति है ना, कोई मरता है तो लोग कहते हैं वो तो जी स्वर्गवासी हो गए, वो तो जी स्वर्ग को प्राप्त हो गए, वो तो स्वर्ग को प्राप्त हो गए। पर जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि वो तो स्वर्ग को प्राप्त हो गए, पर स्वर्ग के जो लोग हैं, स्वर्ग के जो वासी हैं, उनको खुद को स्वर्ग प्राप्त नहीं हो पाता। स्वर्ग के जो वासी हैं उनको खुद इधर उधर धक्के खाना पड़ता है ना। इमेजिन कीजिए, जस्ट सोच के देखिए, कोई व्यक्ति आए है ना, कोई पुलिस वाले आए, कोई गुंडे आए, आपके घर से आपको बाहर निकाल दें, कैसा फीलिंग आएगा आपको? अच्छा लगेगा? सर हिला रहे हैं सब। अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा, तो अच्छा मान लीजिए कभी कभी सरकार किसी व्यक्ति को देश निकाला दे देती है ना, इस देश से बाहर निकल जाओ, या दिल्ली से बाहर निकल जाओ, या भारत से बाहर निकल जाओ है ना। चलो ये भी समझ आता है। जैसे इमेजिन करके देखिए स्वर्गवासियों की, इंद्र बाकी देवी देवताओं की स्थिति कैसी थी, उनको स्वर्ग से ही बाहर निकाल दिया है ना। इमेजिन कीजिए आपको कोई पृथ्वी से बाहर निकाल दे, कहां जाओगे, क्या करोगे, उनकी स्थिति देखिए, बिल्कुल उनको बाहर निकाल दिया है ना। जिस चीज के पीछे, धन, जन, सुंदरी के पीछे हर व्यक्ति भागता है, वो सब कुछ भरपूर मात्रा में उनके पास थी पर भोग नहीं पा रहे थे। क्यों? उनको स्वर्ग से निकाल दिया था। कहां रहना है उनको, कहां खाना है उनको, ये भी नहीं पता था उसका। इधर उधर भटकने लगे, भागने लगे इधर उधर। और अगर हम भौतिक संसार में देखें, अगर मेटेरियल वर्ल्ड में, तो फिर भी कॉम्पिटिटर्स हैं, एक व्यक्ति दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है, दूसरा तीसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है, हर कोई सामने वाले व्यक्ति को नीचे खींचने की कोशिश करता है, किसी तरीके से मैं ऊपर आ जाऊं, बस मैं ऊपर आ जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इमेजिन करके देखिए स्वर्ग लोक की स्थिति, केवल एक ही सूर्य है, दूसरा कोई सूर्य है नहीं, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है आपका, एक ही चंद्रमा है, कोई दूसरा कोई चंद्रमा नहीं, आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, एक ही इंद्र है ना। इतना होने के बाद भी कोई उनको कॉम्पिटिटर नहीं है, तब भी उनकी स्थिति आप इमेजिन करके देखिए, वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनके पास रहने का स्थान नहीं है, है ना। ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं, है ना, ब्रह्मा जी उनको श्वेत सागर पर लेके जाते हैं, वहां पर विष्णु उनको उपदेश देते हैं, चलो समुद्र मंथन करो, है ना, समुद्र मंथन करोगे तो समाधान निकलेगा आपका। तो उनकी स्थिति इतनी खराब है, इतनी भयावह है। तो उसी प्रकार से इस भौतिक संसार का हर व्यक्ति धन जन और सुंदरी इसके पीछे भाग रहा है। हमारे आचार्य वैष्णव भजन में कह रहे हैं असत्य र सत्य करी मानी, हर असत्य चीज को वो सत्य मान के बैठ गया है ना, वो सोचता है कि इस चीज में मुझे बहुत अच्छी खुशी मिल जाएगी, मुझे कामयाबी मिलेगी, मैं कामयाब बनूंगा, है ना। कभी कभी लोग बोलते हैं आप भक्ति कीजिए, मंदिर में आए आइए, वो कहते हैं मुझे पहले पैरों पर खड़े तो हो जाए। कौन से पैरों पर खड़े होने की बात कर रहे हो आप, है ना, जो लोग ऑलरेडी स्टैंड हैं उनकी स्थिति तो देखो आप। हम अपने जीवन में कोई बिजनेस करने लगते हैं, ये देखते हैं कि इस बिजनेस में भविष्य में कितना मुनाफा होगा। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं क्या वो कामयाब है या नहीं है। जब हम कोई पढ़ाई करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि इस पढ़ाई का आगे फ्यूचर क्या है, इस पढ़ाई का जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं। पर जब धन जन और सुंदरी की बात आती है तो हम सोचते ही नहीं है इसके बारे में, है ना। हम सोचते कि मैं धन कमा लूं, आप धन कमा लोगे बहुत अच्छी बात है, है ना। पर जिन लोगों ने ऑलरेडी धन कमाया हुआ है एक बार उनको रोक लो, है ना, प्रभु जी माता जी आपके पास बहुत धन है, है ना, क्या आप दो मिनट के लिए बता सकते हैं कितने खुश हैं आप इस धन से। वो आपको बताएंगे इस धन से वो कितने खुश हैं, वो आपको बताएंगे कि इतने फॉलोअर्स हैं उनके आसपास, है ना। आप जितने मर्जी कामयाब हो जाइए आपके फॉलोअर्स प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा तो नहीं होंगे ना, पर आप प्राइम मिनिस्टर की स्थिति देखिए ना। कोई व्यक्ति अपने पास बॉडीगार्ड कब रखता है, जो बहुत खुश होता है जब किसी चीज का कोई भय नहीं है, चलो अब तो कोई भय नहीं है, मैं अपने पास बॉडीगार्ड्स रखूंगा, भय भयभीत बिल्कुल फियरफुल, इतनी स्थिति, इतने फॉलोअर्स, है ना, इतने नंबरिंग में उनके फॉलोअर्स हैं, फिर भी उनकी स्थिति देखिए, कंडीशन देखिए कि अपनी मर्जी से कहीं वो जा भी नहीं सकते, अपनी मर्जी से वो कुछ वो खा भी नहीं सकते, ऐसी उनकी कंडीशन है। तो ब्रह्मा जी ने इस भौतिक संसार की रचना की है, क्रिएट किया, ऐसे बनाया है भौतिक संसार को। जिस प्रकार से मान लीजिए आप कोई ऑटोमोबाइल लेते हैं या कोई कंप्यूटर लेते हैं या लैपटॉप लेते हैं, कुछ भी आप लेते हैं, जिस व्यक्ति ने बनाया है वो बताएगा इसको यूज किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से इसे चलाया जाएगा, क्या क्या फंक्शंस इसमें हैं। अब हम इस मेटेरियल वर्ल्ड में वो फंक्शन ढूंढ रहे हैं जो इसमें है ही नहीं। मान लीजिए आपने कोई फोन लिया, वो फोन आपका इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं था, तो उसके अंदर आप उन फंक्शंस को ढूंढ रहे हैं जो अच्छी क्वालिटी के फोन्स में होते हैं, वो फंक्शन इसमें नहीं है। सो पीस, सेटिस्फैक्शन, ये फंक्शन, है ना, संतुष्टि, चैन से बैठना, खुशी, ये इस भौतिक संसार में नहीं है ना? आप अगर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे ढूंढने की तो क्या होगा, आपको बहुत दुख उठाना पड़ेगा, बहुत दुख। तो इस भौतिक संसार में जैसे यहां पर हम देख रहे हैं वो जो हलाहल वृष निकला था, वो हलाहल वृष तो ठीक था, पर इस भौतिक संसार में ये धन जन सुंदरी के रूप में क्या है, हलाहल वृष है। और हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से, है ना, अपनी मर्जी से, कोई जबरदस्ती थोप नहीं रहा हमारे ऊपर आप इसको पियो, कोई हमारे को जबरदस्ती नहीं कर रहा आपको पीना ही पड़ेगा, धन तो देखो जी आपको कमाना ही पड़ेगा, है ना, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, है ना। देखिए कम से कम आपके 1 करोड़ तो फॉलोअर्स होने चाहिए, है ना, 1 करोड़ नहीं तो कम से कम आपके फेसबुक पे 1000 लाइक तो होने ही चाहिए, जब तक इतना नहीं होगा तो मतलब आप कामयाब नहीं हो, है ना? ये तो डिमांड की नहीं जा रही है ना, हम खुद इस पॉइजन को हम खुद ऑप्ट कर रहे हैं, हम खुद मांग रहे हैं पॉइजन, है ना, हम खुद ये जहर पीने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हमें पिला नहीं रहा, और ये सोचकर कि ये जहर पीने से मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। इसे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं जानिया सुनिया विष खाई लो, जान बूझकर हम क्या कह रहे हैं, विष ले रहे हैं, पॉइजन ले रहे हैं। हम कितने लोगों का एग्जाम्पल देख सकते हैं अपने आसपास में कि हम लोग सोचते हैं कि शरीर में रहते हुए हम खुश हो जाएंगे, है ना। तो कई लोग हम देख सकते हैं, लोग सोचते हैं भविष्य में मैं ये करूंगा, आप देखिए भविष्य में कई लोग जब बूढ़े हो जाते हैं वो कार्य नहीं कर पाते, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो जवानी में ही कई लिमिटेशंस होते हैं, कई प्रॉब्लम्स होती हैं, कई डिसीजेस हो जाते हैं ना? अगर बच्चा सोचेगा मैं एंजॉय करूंगा, बच्चा भी कैसे एंजॉय करेगा, है ना। आजकल अगर देखेंगे तो बच्चों की जो हॉस्पिटल्स हैं सबसे ज्यादा बढ़ रही हैं, सबसे ज्यादा अगर बीमारियां आ रही हैं तो बच्चों के लिए आ रही हैं। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो अगर हम देखेंगे बच्चों के अंदर ये बीमारियां सबसे ज्यादा आ रही हैं, और कभी भी देश ये डिक्लेयर नहीं कर सकता कि अब हमारे पास सफिशिएंट हॉस्पिटल्स हैं, है ना, अब हमारे को किसी हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं है, अब जितने लोग हैं हम उनको कैटर कर सकते हैं, प्रॉपरली उनसे डील कर सकते हैं, नहीं। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में जो ब्रह्मा जी ने जिसे क्रिएट किया है, ये फंक्शन नहीं है जिसे हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर सब कुछ मान लीजिए ठीक भी है, आपकी बॉडी ठीक है, सब कुछ साथ में रहा है, तो ये माइंड जो है, मन जो है, ये रिजर्वॉयर है फ्रस्ट्रेशन का। इसमें फ्रस्ट्रेशन कूट कूट के भरी हुई है। अपेरेंटली बाह्य रूप से आपको जो भी अपने जीवन में चाहिए होगा वो आपको मिलेगा, हो सकता आपके पास हो, फिर भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके पास नहीं है, और माइंड क्या करता है, उन्हीं चीजों के पीछे भागता है, उन्हीं चीजों के लेके भयभीत होता है, है ना। देखिए माइंड हमेशा तीन फंक्शंस में रहता है, हैंकर, लेमेंटेशन, फियरफुल, है ना। हैंकर करता है, डिमांड करता है उन चीजों की जो उसके पास नहीं है, उन चीजों के पीछे भागता है, मेरे पास नहीं है, किस तरीके से मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा करूंगा साम दाम दंड भेद की मैं इसे प्राप्त कर पाऊंगा किसी चीज को, हैंकर करता है उसको लेके। सेकेंड इज लेमेंट, है ना, जो उसके पास नहीं है या फिर जो उसके पास ऑलरेडी था वो खो गया, उससे छिन गया, अब उसको लेके रोता रहता है, है ना, हाय मेरे से छिन गया, है ना। और थर्ड इज फियरफुल, मान लीजिए जो आपको चाहिए था सब आपके पास है, ना? जितनी मात्रा में चाहिए था उतनी मात्रा में आपके पास है, अब क्या है, फियर, भय, भय किस चीज का, कहीं से कोई छीन ना ले मेरे से, कोई मेरे से ले ना चाहे, है ना, मेरा धन, है ना, मेरी पोस्ट, मेरा पद, मेरा कंट्रोल, मेरी पावर, कोई इसे छीन ना ले। तो हर व्यक्ति क्या है, इन तीन चीजों में रहता है, और फिर भी हम क्या करते हैं, इस भौतिक संसार में रहने के बाद भी इस पर विश्वास कर लेते हैं, है ना? हम विश्वास करते हैं कि देखिए ये भौतिक संसार ने, माया ने सबको धोखा दिया है, मन ने सबको धोखा दिया है, पर मेरे साथ नहीं, जो माइंड है, मन है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, है ना। माया ने कभी आज तक मुझे तंग नहीं किया, नहीं किया ना, और माइंड तो डिस्टर्ब करता ही नहीं है, कभी भी नहीं करता ना, नहीं करता ना, आप सबकी मुस्कान बता रही, बिल्कुल नहीं करता, अच्छा करता है, अच्छा अच्छा मुझे लगा मैं अकेला ही हूं जिसका डिस्टर्ब करता है, अच्छा। तो रशिया के एक लीडर थे मिस्टर स्टॉलिन, उनकी बहुत अच्छी पॉलिसी थी, टेंडेंसी थी, वो क्या करते थे कि अपने पास कुछ लोगों को रखते थे, इंटीमेट लोगों को, अपने कमेटी बनाते थे, उनको ट्रेन करते थे, प्रशिक्षण देते थे, और वो लोग जो थे इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे, किसी से लड़ना झगड़ना कुछ भी हासिल करना करते थे इनके लिए। और ये क्या करता था, कुछ दिनों के बाद अपने जो बहुत ही क्लोज इंटीमेट व्यक्ति होता था उसको मरवा देता था। क्यों? क्योंकि उसको पता था ये व्यक्ति मेरे सारे रहस्य जानता है, ये व्यक्ति मेरे सारे राज जानता है ना, ये मेरी पोस्ट हथिया सकता है। तो इस भय से, है ना, वो रशिया का लीडर था, उससे हर व्यक्ति डरता था, कांपता था, है ना, उसके ऑर्डर पर सब कुछ चलता था, फिर भी उसके अंदर भय इतना था, जो उसके सबसे समीप के थे, सबसे क्लोजेस्ट थे, उनको मरवा देता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मरवा देता होगा तो अब उसके पास कोई काम नहीं करना चाहता होगा, ऐसा नहीं था। हजारों लोग लाइन लगा के खड़े होते थे उसके पास नौकरी लाने के लिए, इस फेथ के साथ, किसने आज तक तो सबको मरवा दिया है पर मुझे नहीं मरवाएगा, मुझसे बहुत प्रेम करता है, मेरा बहुत ध्यान रखता है, मुझे कुछ नहीं कहेगा ये। तो माइंड भी हमारे साथ ऐसी ट्रिक्स खेलता है ना, हमारे को एक कॉन्फिडेंस में रखेगा कि देखो आज तक तो मैंने कभी किसी को इस भौतिक संसार में कामयाब नहीं होने दिया, है ना, कभी आज तक इस भौतिक संसार में खुश नहीं हुआ, पर मैं आपको एक्सेप्शनल बनाऊंगा, ठीक है, और हम एग्री कर जाते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है ना? पर ऐसा होगा नहीं, है ना। तो अगर हम इंद्र की स्थिति में देखें, जो इंद्र की कंडीशन है, वो स्वर्ग के राजा हैं, स्वर्ग के राजा होने के साथ साथ भी क्या है, ही इज डिवोटी ऑफ लॉर्ड, वो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के भक्त हैं। और अगर देखिए उनके पास, ही हैज वेल्थ, उनके पास धन है, ही हैज ब्यूटीफुल लेडीज, सुंदर स्त्रियां उनके पास, अप्सराएं हैं, प्रेस्टीज है, मान है उनके पास, सम्मान है, लोग पूछते हैं उनको, फिर भी अगर उनकी स्थिति देखेंगे, ही इज फियरफुल, हमेशा भयभीत रहते हैं, है ना, कभी संतुष्ट नहीं रहते। और किन किन से भयभीत रहते हैं, हर किसी से, ऐसा नहीं कि असुरों से, चाहे वो डिमन्स क्यों ना हो, असुर क्यों ना हो, उनसे भयभीत रहते हैं वो, है ना, चाहे वो कोई ऋषि क्यों ना हो, उनसे भयभीत रहते हैं वो। अगर कोई ऋषि मुनि तपस्या के लिए जाते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, तो इंद्र घबरा जाते हैं कि कहीं ये मेरी पूछ तो नहीं चाहता। और ना केवल असुर और ऋषि से, भगवान से स्वयं वो भयभीत रहते हैं, है ना, जब उन्होंने देखा नर नारायण ऋषि को तपस्या करते हुए तो भयभीत हो गए, डरने लगे कि ये क्या चाह रहा है मेरे से, है ना। क्या कहीं ये मेरे राज्य तो नहीं चाहता, क्या कहीं ये स्वर्ग का राजा तो नहीं बनना चाहते, है ना। वो भगवान से, इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा उनको मोहित करने के लिए, है ना। और नर नारायण ऋषि उन पर मुस्कुरा रहे थे, है ना, कि कैसा बेवकूफ व्यक्ति है ये, इसको ये सोचता है कि मुझे स्वर्ग चाहिए। तो जो इंद्र है वो भयभीत रहता है, क्योंकि उसके पास क्या है, ये पोजीशन है, ये प्रेस्टीज है ना, उसके पास क्या है, धन है, जिसे पाने के लिए हर व्यक्ति भागता है आगे, ये मुझे खुशी देगी, ये मुझे खुशी देगी, ये मुझे खुशी देगी, वो सब कुछ उसके पास है, फिर भी वो भयभीत है। तो ये मेटीरियल वर्ल्ड का नेचर है, द मोर यू हैव द मोर यू फियर, द मोर यू हैव द मोर यू सफर। जितना ज्यादा आपके पास है उतना ज्यादा आपको सफर करना पड़ेगा ना? हम ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा मैं एक्वायर कर लूंगा, जितना ज्यादा मैं हासिल कर लूंगा उतना ज्यादा मैं खुश हो जाऊंगा, जितना ज्यादा मैं हासिल कर लूंगा उतना ज्यादा मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, है ना। पर जितना ज्यादा हम हासिल कर लेंगे, आप ये सोचिए, उतनी ही आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसे मेंटेन करने के लिए, है ना। मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, जितना आपके पास ज्यादा एक्वायर करते जाएंगे उतना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रबल उठाना पड़ेगा उसको मेंटेन करने के लिए। तभी तो हम देखिए कितने धनवान व्यक्ति हैं, किसी के पास कई कई करोड़ों करोड़ों बिलियनर बिलियनर लोग हैं, है ना। इसका मतलब ये थोड़ी उनके पास इतना धन है अब वो एक जगह बैठ के सोचते हैं कि चलो मेरे पास इतना धन तो है अब मैं हरे कृष्ण जपता हूं, अब मुझे पैसे की तो कोई चिंता है नहीं, मुझे इधर उधर भागना नहीं है, चलो हरे कृष्ण का आराम से बैठ के जप किया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। द मोर यू हैव, द मोर यू हैव टू वर्क टू मेंटेन इट। जितना ज्यादा आपके पास है उतना ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसको मेंटेन करने के लिए, अपनी पोजीशन को, अपने स्टेटस को, अपने धन को। तो बहुत डिफिकल्ट है इस भौतिक संसार में इसको मेंटेन करना, सस्टेन करना। पर वही बात है कि हम लोग ये सोचते हैं कि मैं एक एक्सेप्शनल बन के दिखाऊंगा समाज के लिए, मैं एक एक्सेप्शनल बन के दिखाऊंगा, जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया मैं वो करके दिखाऊंगा, है ना। तो हम कई ड्रीम्स बांधते हैं ना, काश मैं सबसे पॉपुलर व्यक्ति बन जाऊं इस संसार का, है ना, सभी लोग मेरे आगे पीछे घूमे, है ना, हर कोई मेरी बात माने। कितना मैं सोचते हैं, इमेजिन करके देखिए, हिरण्यकश्यप को हर कोई उसकी बात मानता था, केवल एक छोटे से बच्चे के अलावा, केवल एक छोटे से बच्चे के अलावा हर कोई उसकी बात मानता था, है ना। हमारे को ठंड लगती है, गर्मी लगती है, आजकल गर्मी का मौसम है, आप सब फील कर रहे होंगे गर्मी को, है ना। हमारे को ठंड लगती है, गर्मी लगती है, तो कितना संघर्ष होता है ना। हिरण्यकश्यप को ठंड लगती थी, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, वो सिर्फ सूर्य की तरफ देखता था और जितना उसको टेम्परेचर चाहिए होता था टेम्परेचर देता था सूरज ठंड से बचने के लिए। जब उसको गर्मी लगती थी तो वायु की तरफ देखता था और उतनी ठंडी ब्रीज उसको मिलती थी, हवा मिलती थी, है ना। ये उसकी स्थिति थी। एक छोटा सा बच्चा बस उसकी बात नहीं मानता था, है ना। वो इतना पॉपुलर बनना चाहता था, हर कोई मेरे इशारे पे चले, है ना, इतना बड़ा कंट्रोलर बनना चाहता था वो। पर ऐसा कभी नहीं होगा। सुंदर, है ना, हमारे अंदर इच्छा होती है, काश मैं बहुत सुंदर हूं, काश मैं बहुत धनवान हूं, काश मेरे पास बहुत अच्छा घर हो, काश मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी हो, काश मेरा इन्फ्लुएंस और पावर इतना हो कि मैं किसी को भी कंट्रोल कर सकूं, है ना। एक पुरुष चाहता है वो स्त्री को कंट्रोल कर सके, स्त्री चाहती है पुरुष को कंट्रोल कर सके, पति चाहता है पत्नी को कंट्रोल कर सके, पत्नी चाहती है पति को कंट्रोल कर सके, एक दोस्त चाहता है दूसरे दोस्त को कंट्रोल कर सके, दूसरा दोस्त चाहता है वो उसको कंट्रोल कर सके। हर व्यक्ति एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो किसी प्रकार से नियंता कंट्रोलर बन जाए। तभी हम आजकल देख रहे हैं कि हर जगह पे कलेश कलेश कलह कलह फैल रहा है। क्यों? क्योंकि हम उन चीजों की डिमांड कर रहे हैं, उन चीजों के पीछे हैं जो अवेलेबल नहीं है, जो मिलती नहीं है। हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, पीस, वो यहां पर अवेलेबल नहीं है। तो ब्रह्मा जी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, ब्रह्मा जी सोचते हैं इस बात को कि भौतिक संसार का व्यक्ति जितना ट्रबल उठाता है उसको क्या मिलता है रिजल्ट में, केवल एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि इस भौतिक संसार में चाहे धन है, चाहे वो फॉलोअर्स हैं, चाहे वो सुंदरी हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें एक पॉइजन है, एक विष है, एक ऐसा विष जो धीरे धीरे करके स्लो पॉइजन, है ना, हमें मारता जा रहा है। और हम लोग इसके बारे में सोच ही नहीं पा रहे। हम लोग सोच रहे कि मैं इंजॉय कर रहा हूं, है ना, मैं इंजॉय कर रहा हूं, मैं आनंद उठा रहा हूं, पर ये जो विष है हमें मार रहा है। तो जो डिजायर है इंजॉय करने की सेपरेटली कृष्ण से, है ना, कृष्ण से विमुख होकर जो इंजॉय करने की जो भावना है ये अपने आप में पॉइजन है, विष है, और अगर हम इस विष से बचना चाहते हैं तो केवल एक ही सॉल्यूशन है, हमें भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, भगवान की और भगवान के भक्तों की। अगर हम भगवान की और भगवान के भक्तों की शरण लेंगे तो केवल वही एकमात्र हमें इस विष से बचा सकते हैं। जैसे जब वृंदावन में कालिया नाग आया था तो कालिया ने क्या किया था, पूरे जो यमुना नदी थी उसको विष से भर दिया था। उसका स्मोक विष का इतना हैवी था कि ऊपर से पक्षी भी उड़कर जाता था वो भी मर जाता था। तो उस कालिया नाग के जो विष से कोई रक्षा नहीं कर सकता था, है ना, केवल कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की उस कालिया के विष से। जब नामाचार्य हरिदास ठाकुर एक बार अपनी गुफा में बैठकर अपना भजन कर रहे थे तो कुछ भक्त लोग आए और हरिदास ठाकुर को बोलने लगे कि देखिए हम आपसे मिलने के लिए आते हैं पर हमें बहुत कठिन लग रहा है, मुश्किल लग रहा है आपसे मिलना, क्योंकि आप जिस गुफा में रहते हैं आपको तो महसूस नहीं होता पर इस गुफा में एक जहरीला सांप रहता है और उस जहरीले सांप का जो जहर का जो स्मोक है, जो उसका स्मेल है, उसका इतना हैवी है कि हम लोग यहां पर बैठ नहीं पाते। तो हरिदास ठाकुर ने सोचा कि ठीक है, अगर ये गुफा मेरी तो बिलोंग करती नहीं है, अगर मैं यहां से अगर आप लोग को दिक्कत है तो मैं इस गुफा को छोड़ दूंगा। पर जब उस सर्प ने सुना कि मेरी वजह से हरिदास ठाकुर इस गुफा को छोड़ देंगे, सभी भक्तों के सामने वो जो सर्प था उस गुफा से सबके सामने बाहर निकल गया। तो भक्त जैसे यहां पर भगवान शिव हैं, वो क्या कर रहे हैं, पूरे विश्व को उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है और पूरे विश्व को अपने हाथों में लेकर क्या कर रहे हैं, उस विश्व को पी रहे हैं। किस लिए उस विष को पी रहे हैं, विष को पीना अच्छा नहीं लग रहा उनको। ऐसा नहीं है जैसे आजकल के लोग करते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि लोग गांजा पीते हैं, है ना, चरस लेते हैं इसलिए कि हम वी आर फॉलोवर्स ऑफ लॉर्ड शिवा, इसलिए नहीं, अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं, है ना, दूसरों के भलों के लिए, फॉर द बेनिवलेंट एक्ट, है ना, दूसरों के भले के लिए शिव जी क्या कर रहे हैं, इस विष को पी रहे हैं ताकि जो सामने के लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, उनको किसी प्रकार से समस्या ना आए, किसी प्रकार से दिक्कत ना आए। तो ये जो शब्द है बेनेवोलेंट, अगर आप इसका मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब है डिजायरिंग टू हेल्प अदर्स, ऐसी इच्छा दूसरों की मदद करने के लिए, है ना, काइंड एंड हेल्पफुल। तो जो सबसे बड़ा बेनेवोलेंट एक्ट है जो हम दूसरे के भले के लिए कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं अपने अपने लेवल पे, वो है प्रीचिंग, प्रचार। क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं भौतिक संसार पूरा विष से भरा हुआ है, अगर हम इस प्रकार का प्रचार नहीं करेंगे तो लोग क्या होंगे, इस विष को पीकर मरते रहेंगे, है ना, मरते रहेंगे किस प्रकार से, स्पिरिचुअल डेथ, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को, कृष्ण भावना भावित को, कृष्ण भावना मृत को भूल जाएंगे। वो ये भूल जाएंगे कि मेरा भगवान से क्या संबंध है, मेरा क्या कर्तव्य बनता है, मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए, भूल जाएंगे। और अगर भक्त लोग प्रचार नहीं करते तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत सेल्फिश एक्ट है, केवल अपना भजन करना, केवल अपने बारे में सोचना, केवल ये सोचना कि मैं अपना भला किस प्रकार से कर पाऊंगा। जैसे नरसिंह देव जब प्रकट हुए, नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को बोला कि आप चलिए मेरे साथ, प्रहलाद महाराज ने बोला नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जो शहर में, गांव में जो इतने लोग बैठे हैं, अगर मैं आपके साथ मैं तो आपकी भक्ति कहीं पर भी कर सकता हूं, प्रहलाद महाराज ने बोला, पर इन लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो प्रीचिंग, प्रचार, है ना, प्रचार के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस प्रकार से भगवान शिव, है ना, जिस प्रकार से भगवान शिव इस पूरे सभी देवी देवताओं, सभी असुरों और पूरे विश्व की रक्षा कर रहे थे उस जहर को पीकर, उसी प्रकार से प्रचार के माध्यम से हम इस जहर के इफेक्ट को कम कर सकते हैं, है ना, जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने अपने आचरण से करके दिखाया, अपनी प्रीचिंग से करके दिखाया, जो श्रील प्रभुपाद का विजन था प्रीचिंग को लेके, प्रचार को लेके। श्रील प्रभुपाद ने एक बार इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था। श्रील प्रभुपाद उस पत्र में क्या कह रहे हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट शुड बी ब्राह्मणा। श्रील प्रभुपाद इंदिरा गांधी को लिख रहे हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वो सब कौन होने चाहिए, ब्राह्मण होने चाहिए। एंड बिफोर दे डू एनी पॉलिटिकल डिसीजन, कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन निकालने से पहले क्या करना चाहिए, दे शुड डू कीर्तन, टू टाइम कीर्तन इज मैंडेटरी, दो बार कीर्तन जरूर करना है। ये किसकी बात हो रही है, कोई भी पार्लियामेंट में डिसीजन होगा उससे पहले, सो दैट दे गेट ऑल नॉनसेंस आउट ऑफ देयर ब्रेन, है ना, किस लिए कीर्तन करना चाहिए, ताकि जो भी नॉनसेंस है उनके दिमाग में, जो भरा हुआ है कचरा, वो बाहर निकल सके। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इतना पॉइजनस है, इतना जहरीला है, अगर वो कोई डिसीजन लेगा तो किस डिसीजन पे पहुंच पाएगा, किस कंक्लूजन में पहुंच पाएगा वो, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा उसका, है ना। उसका कंक्लूजन इसलिए होगा ताकि किस प्रकार से दूसरे सामने वाले व्यक्ति को हार्म किया जा सके। पर जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण लेगा, भगवान की कीर्तन की शरण लेगा, तो क्या होगा, उसका जो उनका उसका जो चित है वो प्योरीफाई होगा, शुद्ध होगा। अब जब वो व्यक्ति डिसीजन ले पाएगा, वो डिसीजन ठीक होगा, दूसरों के भले के लिए होगा। श्रील प्रभुपाद मिस्टर निक्सन से मिलना चाहते थे। श्रील प्रभुपाद बता रहे थे, आई वॉन्ट टू प्रीच हिम एंड इफ मिस्टर निक्सन हैज अ कूल हेड ही कैन हेल्प अस स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो श्रील प्रभुपाद का हमेशा, श्रील प्रभुपाद वॉज अ रिवोल्यूशनरी, श्रील प्रभुपाद ये रिवोल्यूशन लाना चाहते थे। पर रिवोल्यूशन इसलिए नहीं कि श्रील प्रभुपाद रिवोल्यूशन ला रहे थे, अपनी ह्यूमिलिटी से, अपनी विनम्रता से, अपनी तपस्या से। किस प्रकार की विनम्रता, किस प्रकार की तपस्या, देखिए वृंदावन के एक साधु जो अमेरिका में गए हैं, जिस प्रकार से वे ऑफ लिविंग है उन लोगों का, और वृंदावन के एक साधु का जिस प्रकार से वे ऑफ लिविंग है, उनके लिए वो प्लेस कैसा था, इट वॉज इक्वल टू हेल, नर्क के बराबर था बिल्कुल। पर किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने अपनी तपस्या के बल पर, किस प्रकार की श्रील प्रभुपाद ने तपस्या की कि जितने भी लोग आते थे, जितने भी भक्त आते थे, विजिटर्स आते थे, श्रील प्रभुपाद उनके कुक करते थे, खुद बर्तन धोते थे, सेम टॉयलेट लाइन में लगते थे, खुद सारी सफाई करते थे। इस एक्ट से श्रील प्रभुपाद ने, इस तपस्या से श्रील प्रभुपाद ने उनको ट्रेन किया। श्रील प्रभुपाद ने बोला, इट्स लाइक अ सर्कस फॉर ट्रेनिंग वाइल्ड एनिमल्स। किस प्रकार से था अमेरिका में प्रचार करना, जैसे जंगली जानवरों को ट्रेन करना, है ना, जंगली जानवरों को ट्रेन करना। तो श्रील प्रभुपाद ने इस पूरे भौतिक संसार के, पूरे मेटेरियल वर्ल्ड के इस पॉइजनस इफेक्ट को, है ना, इस जहरीले इफेक्ट को खत्म किया है। और ये पॉइजनस इफेक्ट क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति। यही इंद्र तृप्ति की भावना जिसमें हर व्यक्ति लगा हुआ है, धन जन और सुंदरी, हर व्यक्ति इसके पीछे भाग रहा है, धन जन सुंदरी पूजा मान प्रतिष्ठा, केवल एकमात्र गोल, एकमात्र लक्ष्य व्यक्ति का यही रहता है कि किस प्रकार से एक्वायर कर लो। सिर्फ इस भावना के साथ, इस इंटेंशन के साथ कि जिस दिन मुझे ये मिलेगी, जिस दिन मुझे ये प्राप्त हो जाएगी, उस दिन मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो श्रील प्रभुपाद ने ना केवल इसके इफेक्ट को खत्म किया है, पॉइजनस इफेक्ट को, देखिए श्रील प्रभुपाद ने, पूरा भौतिक संसार इसके पीछे भाग रहा था, जस्ट वन पर्सन, केवल एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति, उसने पूरे इस भौतिक संसार के इस पॉइजनस इफेक्ट, इस इंद्र तृप्ति की भावना को खत्म कर दिया। और ना केवल प्रभुपाद ने इस पॉइजनस इफेक्ट को खत्म किया, बल्कि श्रील प्रभुपाद ने इसके साथ साथ कई ऐसे काउंटर खोले, जिसे एस्कॉन कहा जाता है, कई ऐसे काउंटर खोले जहां पर अमृत बांटा जा रहा है, फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है अमृत, कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावना का अमृत वहां पर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, बांटा जा रहा है सभी के लिए। तो ना केवल श्रील प्रभुपाद ने इस भौतिक संसार के पॉइजनस इफेक्ट को खत्म किया, बल्कि साथ साथ श्रील प्रभुपाद ने ये अमृत भी सबको दिया, ताकि हर व्यक्ति इस भौतिक संसार से निकल सके। तो किसी भी प्रकार के, जो आजकल लोग वेलफेयर एक्ट के नाम पे बहुत कुछ करते हैं, है ना, वेलफेयर एक्ट के नाम पे लोग आजकल अनाथ आश्रम खोलते हैं, है ना, जितने अनाथ आश्रम खोलते जा रहे हैं उतने बच्चे अनाथ होते जा रहे हैं, है ना, कितने लोग बड़े बड़े आजकल ओल्ड एज होम्स भी खोलने लग गए हैं, जितने ओल्ड एज होम्स खोलने लग गए हैं उतने ही हम देखते हैं बच्चे अपने माता पिता को छोड़े जा रहे हैं, कितने लोग हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं चैरिटेबल वर्क के नाम से, जितने हॉस्पिटल्स खुलते जा रहे हैं उतने ही लोग बीमार होते जा रहे हैं, है ना। जब दो हॉस्पिटल हुआ करते थे तब भी उतनी भीड़ थी, जब 200 होते तब भी उतनी भीड़ थी, आजकल हम क्या देख रहे हैं कि खाने की दुकानें कम होती हैं बाहर, पर हॉस्पिटल ज्यादा होते हैं, डिस्पेंसरी ज्यादा होती है ना। और बिल्कुल बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन बनाया होता है, बिल्कुल खाने की ढाबे के साथ साथ एक डिस्पेंसरी खुली होती है, खाओ बीमार हो और जाओ। तो क्या है, जितनी इंद्र तृप्ति व्यक्ति करता रहेगा, जितना सेंस ग्रेटिफिकेशन में इन्वॉल्व होगा, उतना बीमार होगा व्यक्ति, उतना पछताएगा। तो जितने प्रकार के हम वेलफेयर वर्क देख रहे हैं आजकल, एक्चुअली ये वेलफेयर वर्क नहीं है। श्री प्रभुपाद बता रहे थे ये वेलफेयर वर्क उसी प्रकार से है जैसे आप डूबते हुए व्यक्ति का कुर्ता बचा लें। मान लीजिए कोई भक्त डूब रहा हो और आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, आपने उसको कुर्ता पकड़ लिया और कुर्ता बच गया, है ना, वो भक्त डूब गया और आप बहुत खुश हो रहे हैं, देखो मैंने कुर्ता बचा लिया। वो कुर्ता बजाने का क्या फायदा था, वो कुर्ता बजा के क्या हुआ, है ना, डूबते हुए व्यक्ति का कुर्ता बजाने से कोई फायदा नहीं है, है ना। तो उसी प्रकार से ये जो वेलफेयर एक्ट है, ये किसी प्रकार से केवल बॉडी लेवल पे, शरीर के लेवल पर, है ना, किस प्रकार से शरीर की रक्षा की जा सके, केवल इसी के बारे में सोचना, किस प्रकार से शरीर को खिलाया जा सके, शरीर को एंजॉयमेंट दे जा सके, शरीर को सुख दिया जा सके। तो श्रील प्रभुपाद ने जो मूवमेंट दिया है ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, ये जो मूवमेंट है सबसे बड़ा गिफ्ट है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। श्रील प्रभुपाद अपने कोट में बता रहे हैं, आर मूवमेंट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू द ह्यूमन रेस। हमारा जो ये आंदोलन है ये सबसे बड़ा तोहफा है मनुष्य जाति के लिए। दे मे नॉट इमिडिएटली अप्रिशिएट बट दे विल कम, बट टाइम विल कम एंड हिस्ट्री विल गिव एविडेंस। प्रभुपाद बता रहे हैं हो सकता है इमिडिएटली अभी कोई इसे समझ ना पाए, पर समय ऐसा आएगा और जो हिस्ट्री है वो एविडेंस देगी दैट दिस मूवमेंट सेव द ह्यूमन सोसाइटी फॉर बींग फॉलन इन टू बारबेरिनिज्म। की सोसाइटी ने पूरे समाज को बचाया बारबेरिनिज्म से। बारबेरिज्म का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड, है ना, क्रूएल, है ना, खून के प्यासे लोग, है ना, ब्लड थर्स्टी पीपल, है ना, ब्रूटल, क्रूड, ऐसे लोगों से ऐसे लोग बनने से श्रील प्रभुपाद ने बचाया है। और श्रील प्रभुपाद का जैसे हम भी हमने चर्चा की कि श्रील प्रभुपाद का जो मूड रहा था हमेशा, जब श्रील प्रभुपाद गए भी अमेरिका तो श्रील प्रभुपाद ने हमेशा भगवान से प्रार्थना की। श्रील प्रभुपाद ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं आया हूं यहां पर प्रचार करने के लिए, सबका उद्धार करने के लिए, है ना, अब मैं इस पूरी पृथ्वी का उद्धार कर दूंगा, है ना। श्रील प्रभुपाद की कभी ये भावना नहीं थी। श्रील प्रभुपाद ने प्रचार किया बट बहुत हम्बल मूड से, टू प्लीज द लॉर्ड, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जैसे यहां पर इस श्लोक में बता रहे हैं, श्लोक 40वें श्लोक में बता रहे हैं इसमें कि जब भगवान शिव जी विष पीने लगे तो उन्होंने विष पीते समय सोचा कि मुझे पता है मेरे इस एक्ट से, मेरे इस कार्य से भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। तो भगवान प्रसन्न होंगे इस भावना को अपने मन में रखते हुए श्री प्रभुपाद ने इसका प्रचार किया। इसलिए सच्चिदानंद स्वामी महाराज जी का बता रहे थे कि जस्ट बिफोर श्री प्रभुपाद लेफ्ट दिस वर्ल्ड, श्री प्रभुपाद अपने एक मित्र से मिले और श्री प्रभुपाद के उस मित्र ने, उस फ्रेंड ने श्री प्रभुपाद से पूछा, व्हाट विल हैपन टू योर डिसाइपल्स व्हेन यू विल लीव, आपके शिष्यों का क्या होगा जब आप इस पृथ्वी को छोड़ देंगे। श्री प्रभुपाद ने बोला, दे ऑल विल बिकम हिप्पीज अगेन, वो सारे के सारे दोबारा हिप्पीज बन जाएंगे, बट नॉट इफ दे प्रीच, पर अगर वो प्रचार करेंगे तो वो इससे बच पाएंगे। तो श्री प्रभुपाद एक तरीके से हमें बता के जा रहे हैं कि अगर हम हिप्पीज बनने से बचना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रचार करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि सबसे बड़ा भले का कार्य अगर हम किसी के लिए कर सकते हैं तो उसको ये बताना कि वो कौन है, उसका भगवान से क्या संबंध है। और अगर रियलिटी में, सच में कोई व्यक्ति खुश होना चाहता है, आनंदमय होना चाहता है, तो उसको अपने भगवान से संबंध को जागृत करना पड़ेगा। श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट मींस प्रीचिंग। इस कृष्ण भावना में आंदोलन का मतलब है प्रीचिंग। इस आंदोलन में कोई भी कार्य है वो प्रचार है, चाहे वो डीटी वर्शिप क्यों ना हो, चाहे वो यूथ फोरम प्रीचिंग क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रीगेशन प्रीचिंग क्यों ना हो, वह हरिनाम संकीर्तन क्यों ना हो, चाहे वो मंदिर क्लीनिंग क्यों ना हो, हर कार्य क्या है, प्रीचिंग है, प्रचार है। लोग आकर्षित होते हैं, विशेष रूप से लोग जब इस्कॉन टेम्पल्स में आते हैं, लोग देखते हैं कि मंदिर साफ है, ना? मंदिर साफ है, लोग ये देखते हैं कि मंदिर साफ सुथरा है, लोग इसलिए आना चाहते हैं मंदिर में। प्रभुपाद बताने, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट मींस प्रीचिंग, विदाउट प्रीचिंग वन कैन हैव नो टेस्ट, बिना प्रचार के हमें कोई टेस्ट नहीं मिलेगा, एंड विदाउट टेस्ट यू वॉन्ट बी एबल टू गो विद दिस हरी हरी बोल, है ना। अगर हम ये हरी हरी बोल करते रहेंगे पर प्रचार नहीं करेंगे, हमें कोई टेस्ट नहीं मिलने वाला। इफ यू डोंट प्रीच विद इन फ्यू ईयर्स आफ्टर आई लीव, देयर विल बी नो मोर हरे कृष्णा मूवमेंट। प्रभुपाद बता रहे हैं, अगर आप प्रचार नहीं करेंगे तो मेरे जाने के कुछ समय के बाद ये हरे कृष्णा आंदोलन बचेगा नहीं। Because no one is preaching in churches, they are all closing up. क्योंकि चर्चेस में कोई प्रचार नहीं कर रहा, वो सारे बंद हो रहे हैं। So why don't you are serious about this preaching work? तो इस प्रचार को लेके हम गंभीर क्यों नहीं हैं? It is my dream that you take over the United States and make it Krishna consciousness. शिवपाल बता रहे, मेरा सपना है, मेरी ड्रीम है कि ये पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को आप प्रचार करो, उसको कृष्ण भावना में बना दो। Practically speaking, my Guru Maharaj has invented this movement for that purpose. शिवराज बता रहे, practically मेरे Guru Maharaj ने इस movement को बनाया है इसी purpose से, प्रचार के माध्यम से, प्रचार के लिए, ना, preaching के लिए। My ambition is that you make a revolution against this godless society. शिवराज बता रहे, मेरा ambition है कि आप क्या करो, एक revolution लाओ इस godless society के प्रति। आजकल गॉडलेस सोसाइटी इतनी बढ़ती जा रही है, लोग गर्व से बोलते हैं आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक हूं। आप किसी को प्रचार कीजिए, लोग गर्व से बोलते हैं मैं नास्तिक हूं, आई एम एन एथिस्ट। ये गर्व की बात है उनके लिए। और अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो हम क्या देखेंगे, ये जो एथिस्ट लोग हैं, ये नास्तिक लोग हैं, गॉडलेस सोसाइटी बढ़ती जाएगी। और जितनी ये गॉडलेस सोसाइटी बढ़ती जाएगी, हम क्या देखेंगे, कुछ समय के बाद हमारे लिए भी भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम खुद भी भक्ति करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रीच, हमें प्रचार करना पड़ेगा, है ना। और ना केवल लोगों को प्रचार करना है ना, प्रचार तीन प्रकार का होता है ना। सबसे पहले प्रचार करना है अपने आप को, है ना। तीन प्रकार के प्रचार हमेशा करने चाहिए, है ना। अपने आप को प्रचार करना चाहिए, भक्तों के बीच में प्रचार करना चाहिए, और नए लोगों को प्रचार करना चाहिए। जब हम इन तीनों को प्रचार, ये सोलनेस भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज एक बार अपने प्रवचन में बता रहे थे कि ये थ्री टाइप्स ऑफ प्रीचिंग हमेशा साथ में रहने चाहिए ना। अगर हम अपने आप को प्रचार नहीं करेंगे, केवल लोगों को प्रचार करते रहेंगे, तो हमारा कोई चरित्र नहीं बचेगा, हमारा कोई कैरेक्टर नहीं बचेगा ना। हमारा अपना कोई, हम क्या बोल रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। अगर हम भक्तों के बीच में केवल प्रचार करते रहेंगे तो क्या होगा, बहुत यश मिलेगा, है ना। सब बोलेंगे प्रभु जी आप तो बहुत महान हो, प्रभु जी आप तो क्या गाते हो, प्रभु जी आप तो क्या लेक्चर देते हो, है ना, प्रभु जी आप तो क्या सेवा करते हो, हर कोई गुणगान गाता रहेगा। तो जब हम बाहर जाते हैं प्रचार करें, नए लोगों के बीच में कोई पूछता ही नहीं है वहां पर, है ना। हम हरे कृष्णा कहते हैं वो मुंह फेर लेता है ना, तो भी हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है, हमारे को बहुत फायदा मिलता है ना। जो हमारा ईगो की बिल्डिंग खड़ी हो रही होती है वो क्रश होती है। तो ये जो प्रीचिंग एक्टिविटी है ये हमेशा हमें एक्टिव रखती है ना। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने बोला है, प्राण आचे यार से हो तो प्रचार। एक जीवित और मृत व्यक्ति में अगर हम डिफरेंस देखना चाहते हैं तो केवल एक ही डिफरेंस है कि एक जीवित व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है। एक जीवित व्यक्ति प्रचार कर रहा है, एक मृत व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता। तो अगर हम इस मेटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक संसार में देखें, तो हर समय कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह से जहर निकलता जा रहा है, पॉइजन निकलता जा रहा है, हर जगह जगह से पॉइजन निकलता जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें श्रील प्रभुपाद के, शिवजी के फुटस्टेप्स को फॉलो करके हमें इस पॉइजनस इफेक्ट को खत्म करना है ना, प्रचार के माध्यम से ना। अगर हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद ने जिस प्रकार से इस पॉइजनस इफेक्ट को खत्म किया, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के फुटस्टेप्स को फॉलो करके हमें भी इस पॉइजनस इफेक्ट को खत्म करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा। पर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके लिए श्रील प्रभुपाद वार्निंग दे रहे हैं कि हम इमिटेट ना करें, नकल ना मारें। जैसे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, कई लोग शिव जी की नकल मारते हैं और चरस और गांजा पीने की कोशिश करते हैं, है ना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि शिव जी को तो वो जहर पीने से कुछ नहीं हुआ, पर उन लोगों को क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है ये चरस गांजा पीने से, वो धीरे धीरे करके मर रहे होते हैं। एक बार, बहुत पुरानी बात है, 2004 की बात है, पंचशील में हिज होलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज लेक्चर दे रहे थे। तो एक भक्त ने क्लास के बाद महाराज से प्रश्न पूछा, उन्होंने महाराज से पूछा, महाराज कैन वी बिकम आचार्य। श्रील प्रभुपाद महाराज ने बोला कि हाँ, आप सभी को आचार्य बनना चाहिए, पर आप फाउंडर आचार्य मत बनिए, फाउंडर आचार्य एक ही रहने दीजिए, है ना। आचार्य बन सकते हैं, यू कैन बिकम आचार्य, पर फाउंडर आचार्य मत बनिए, कुछ इन्वेंट मत कीजिए अपना। जो ऑलरेडी श्रील प्रभुपाद ने दिया है, जो पूर्ववर्ती आचार्य ने दिया है, केवल उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करके हम लोग क्या करें, जो उन्होंने दिया है उसको प्रीच करने की कोशिश करें, जो उन्होंने बोला है उसको एज इट इज दोहराने की कोशिश करें, जो उन्होंने बताए हैं, नियम बताए हैं, उसका पालन करने की कोशिश करें। जब हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो भी भौतिक संसार का, इस मेटेरियल वर्ल्ड का, क्योंकि देखिए इस भौतिक संसार में ये पॉइजन निकलना बंद नहीं होगा, वो हलाहल विष तो केवल एक बार निकला था, पर यहां पर हम देख रहे हैं जगह जगह से, हर कोने कोने से विष निकल रहा है ना, हर जगह जगह से विष निकल रहा है, और ये विष क्या कर रहा है, हमें मारने की कोशिश कर रहा है ना। चाहे ये स्टडीज के रूप में क्यों ना हो, चाहे ये आजकल भौतिक संसार में जो हर व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है, इसके रूप में क्यों ना हो, है ना, चाहे वो प्रेस्टीज के रूप में क्यों ना हो, यश मान पूजा प्रतिष्ठा के रूप में क्यों ना हो, फॉलोअर्स के रूप में क्यों ना हो, फेम के रूप में क्यों ना हो, किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, पर ये जो पॉइजन क्या कर रहा है, ये हमारी भक्ति को नष्ट कर रहा है। तो हमारे को चेक करना पड़ेगा, हमें प्रचार करना पड़ेगा, श्रील प्रभुपाद जी के फुटस्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा कि प्रचार हम अपने आप को भी करें, चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपने आप को प्रचार करें, भक्तों के बीच में प्रचार करें, और बाहर जाएं और हरिनाम संकीर्तन या बाकी प्रीचिंग के माध्यम से सभी लोगों को प्रचार करें। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि जो पॉइजनस इफेक्ट है इस भौतिक संसार का, इसको खत्म कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर विराम दूंगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की निदायिका प्रेमानंद।